मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 18 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी दीपाली तिवारी का, जो शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की साथ से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे नियमित तौर पर कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने ईमेल लिख करके मुझे सजेस्ट किया है कि सर, शुक्रवार को आप जो डेली हमें हर शुक्रवार को जो आप सूचनाएं देते हैं, बेहतर है कि उसे बंद कर दें। लेकिन मित्रों, ये आपके लिए तो सही हो सकता है, लेकिन आप सोच करके देखिए कि जब पहली बार आप मेरा डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे होंगे, तब क्या उस समय भी आपके लिए शुक्रवार की यह सूचनाएं उतनी ही अर्थहीन थी या मोनोटोनस जैसी थी, नीरस थी, जितनी कि आज है? आपको लगेगा कि नहीं नहीं उस समय तो आपके लिए यह सूचना जरूरी थी। तो ठीक इसी तरह से आप समझ लीजिए कि उनके लिए यह सूचना बहुत जरूरी है जो अभी अभी इस डेली ऑडियो लेक्चर से जुड़े हैं। और चूंकि इसका करेक्टर ही डेली ऑडियो का है, तो डेफिनेटली रोज जाना इससे कुछ न कुछ स्टूडेंट, युवा और दूसरे भी साथी जुड़ते रहते हैं। इसलिए आपके सजेशन को न मान पाने के लिए मैं माफी चाहते हुए ये सूचनाएं देना जारी रखूंगा। और सूचना यह है कि दोस्तों, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दिया जाता है, लेकिन शनिवार को प्रेस क्लिपिंग्स आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल्स दिए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र पत्रिका के भी 2 आर्टिकल्स दिए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और एक वीकली क्वेश्चन, साप्ताहिक प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि आप मुख्य परीक्षा का अभ्यास कर सकें। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी और सूचना है फ्रेंड्स, और वो ये है कि कल यूट्यूब पर एक लेक्चर डाला गया है जो करेंट अफेयर्स से संबंधित है, करेंट ऑफ यूपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स दिसंबर 2020 का एडिशन है। उसमें बेसिकली जो नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका कलेक्शन है, और उन घटनाओं का इस रूप में कलेक्शन है कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करेंगे, यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, जिसे मैं कहता हूं फोकस तरीके से प्रिपरेशन करना। तो यदि आप चाहें तो आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, उस लेक्चर को सुन सकते हैं। उस लेक्चर को सुनने के बाद आपको एक जो सबसे बड़ा लाभ हो सकता है वो ये कि जैसे नवंबर में आप डेली ऑडियो लेक्चर सुनते रहे हैं, आप न्यूज भी सुनते रहे हैं, आप अखबार भी पढ़ते रहे हैं, है ना, मैगजीन भी आपने उस महीने की पढ़ी होगी, तो हो सकता है कि ढेर सारा कलेक्शन आपने अपने पास भी किया हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते गए हों आप। इसे सुनने के बाद आप चाहें तो अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन इस लिहाज से कि ठीक है, आपने इतने सारी घटनाएं नोट की हुई हैं, लेकिन इनमें से एग्जामिनेशन के लिए कौन सी घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि उसके लिए ये जो लेक्चर है आपको एक दृष्टि दे सके, आपका एक मार्गदर्शन कर सके। फ्रेंड्स, आइए हाँ अब हम घटनाओं पर बात करते हैं। मुख्य विषय के तहत मैं भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में आपसे थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। कुछ दिनों से, खासकर 3-4 दिनों से एक खबर छप रही है, और खासकर ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में आ रही है एयर इंडिया को लेकर। आपको मालूम है कि हमारा जो एयर इंडिया है वो बहुत जबरदस्त रूप से घाटे में चल रहा है, और अभी से घाटे में नहीं चल रहा है, बहुत समय से ये घाटे में चल रहा है। घाटे में चलता है, सरकार अपनी तरफ से कुछ उसे धन उपलब्ध करा देती है, फिर से वो घाटे में आ जाता है, फिर धन उपलब्ध करा देती है, तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक फंड है वो उसमें खर्च हो रहा है। सच पूछे तो लिबरलाइजेशन के तहत एक ये भी बात रखी गई थी कि सरकार का काम ये नहीं है कि वो बिजनेस करे, एयर इंडिया तो एक तरह का बिजनेस ही है, आप कह लीजिए कंपनी ही है। तो अब सरकार धीरे धीरे इन सब से अपने को विड्रा करने लगी, और खासकर ऐसे बिजनेस से, आप ऐसी कंपनीज, ऐसे काम से तो विड्रा ही करने लगी है जहां उसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर व्यावहारिक दृष्टि से सोचे तो ये गलत भी नहीं है। तो दोस्तों, सरकार ने अब ये फैसला कर लिया था कि एयर इंडिया को प्राइवेट किसी कंपनी के हाथ में वो बेच देंगे। मैं सीधे सरल और स्ट्रेट शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं, इससे पहले भी कोशिश की गई लेकिन उस समय ये नहीं बिका, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान है एयर इंडिया को कि अब खरीदने वाला भी तो अपने ढंग से सोचेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब ऐसी संभावना बन रही है कि शायद एयर इंडिया को कोई खरीद ले, और खरीदने के लिए जो नाम अभी सबसे पहले सामने आया है वो है टाटा कंपनी का, टाटा। और मज़ेदार बात यह है कि सच पूछिए तो पहले ये टाटा की ही कंपनी थी, टाटा एयरलाइंस ही थी, जिसे नेशनलाइज्ड करके फिर सरकार ने ले लिया था और फिर उस समय एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस वगैरह नाम रखे गए। यूं कह लीजिए कि अगर टाटा एयरलाइंस ने इसे खरीद लिया, टाटा ने खरीद लिया भी कहना चाहिए, तो फिर से यह कंपनी उसी के हाथों पहुंच जाएगी। यहां एक दो बातें हैं इस घटना से जो जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पहला तो यह है कि देखिए, हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इतना नुकसान उठाती हैं। हालांकि बात यहां एयर इंडिया की हो रही है लेकिन इस संदर्भ में आप इसे थोड़ा सा व्यापक रूप में देख सकते हैं। क्यों पब्लिक सेक्टर की जो हमारी यूनिट है वो घाटे में चल रही है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट है कि जो बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आज का एडिटोरियल कमेंट है वो मैं आपको आज प्रोवाइड भी कर रहा हूं। उसमें उन्होंने एक प्रश्न उठाया है और प्रश्न ये उठाया है कि जो टाटा ने अगर इसे खरीदा तो टाटा पहले से ही दो एयरलाइंस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में मौजूद है। एक सिंगापुर एयरलाइंस है विस्तारा के रूप में और एक और एयरलाइंस है मलेशिया के एयरलाइंस है, और अब वो एयर इंडिया को भी ले लेगी। तो इसमें ये जो आशंका उठाई गई है वो ये है कि ऐसी स्थिति में कहीं ये ना हो कि ये जो एयरलाइंस हैं, खासकर विदेशों में जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, उस पर टाटा का ही एकाधिकार हो जाए, मोनोपोली। और मोनोपोली को लेकर के आपको मालूम है कि कैसे फेसबुक को लेकर के अमेरिका में जबरदस्त रूप से केसेस चल रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी और मैंने उस समय आपको सजेस्ट भी किया था कि प्लीज़ आप मोनोपोली वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि भारत में भी जिस तरह से मुकेश अंबानी की कंपनियां धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में फैलती चली जा रही हैं, और खासकर टेलीकॉम सर्विसेज में, और दूसरा अदाणी ग्रुप जिस तरीके से हमारे जो एयरपोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, उन पर उसका नियंत्रण होता चला जा रहा है, इसको लेकर के भी मोनोपोली की बात उठाई जा रही है कि एक दिन ऐसा होगा जब सब कुछ पर इनका एकाधिकार हो जाएगा। तो यही बात आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एयर इंडिया के माध्यम से उठाई गई है। फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत ही सरल सा है। सरकार ने हमारी जो कैबिनेट है, परसों बुधवार को उन्होंने एक सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स इशू किए हैं, खासकर हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है उनके लिए। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र के जो इक्विपमेंट आते हैं, उनके जो उपकरण आते हैं, और साथ ही साथ उनको जो सोर्सेज मिलते हैं जहां से वो सूचनाएं और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, उनको बकायदे सिक्योरिटी चेक करानी होगी। सिक्योरिटी चेक, ये सिक्योरिटी चेक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब चीज़ें तो टेलीकॉम पर निर्भर होने लगी हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, मतलब टेलीकॉम सेक्टर आप यूँ कह लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन हो गया है, रीढ़ की हड्डी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कोई साइबर अटैक होता है, या यूं कह लीजिए कि मेलवेयर अटैक होता है, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है पूरे के पूरे देश की। तो जो सिक्योरिटी जो डायरेक्टिव्स जो जारी किए गए हैं, डिसीजन लिया गया है, ये अपने आप में एक थोड़ा सा तथ्य है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा आपके सिलेबस में है तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के संबंध के तहत जो थोड़ा सा समय बचा है, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है, इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान क्या रहा है, आप यूँ कह लीजिए कि भारत के कारण ही आज बांग्लादेश का अस्तित्व है। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कारण ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। और वहाँ से आप मान करके चली कि बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत बेहतर होते चले आ रहे थे, और बकायदे 1971 में बांग्लादेश बना, और उससे अगले ही साल 1972 में दोनों देशों के बीच 25 वर्ष की संधि हुई थी, मैत्री सहयोग और शांति की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1975 में वहाँ जो है वो सैन्य विद्रोह हो गया, और सैन्य विद्रोह होने के बाद तो देखिए वहाँ सैनिक शासन चूंकि स्थापित हो गया था, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध थोड़े से तनावपूर्ण हुए। लेकिन बाद में फिर चुनाव होने लगे और डेमोक्रेटिक सिस्टम जब वहाँ आया तो दोनों देशों के संबंध फिर ज्यादा और बेहतर हो गए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कल हस्ताक्षर हुए हैं, 7 संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं। किन कौन कौन से क्षेत्र हैं वो बहुत सिंपल से हैं, जो सामान्यतया होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य क्षेत्र हैं हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो बात इम्पॉर्टेंट हो सकती है वह है कि दोनों देशों के बीच चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी, ये जो रेल संपर्क था, इसे फिर से शुरू किया गया। ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से 1965 तक ये रेल चल रही थी, लेकिन बीच में बंद हो गई, 1965 से बंद हो गई, और अब 55 सालों के बाद इसकी फिर से शुरुआत की गई है। ये प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट सूचना हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बकायदे जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, अपने उद्बोधन में ये कहा कि जो बांग्लादेश है वो हमारे पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, नेबर फर्स्ट। दोस्तों, जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उस सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ के संबंधों पर विशेष ध्यान देना है। और जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पड़ोसी देशों के साथ के संबंधों पर ही आधारित हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और इस लिहाज से आपको जो दूसरे और भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे नेपाल है, आप देखिए भूटान है, म्यांमार है, ये सब के बारे में भारत, इन सब के साथ, इधर आप मालदीव और श्रीलंका देखते हैं, इन सब के साथ भारत के जो संबंध हैं उसकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। धर्मेंद्र चौधरी नागौर राजस्थान से, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं हाँ में देना चाहूँगा, क्योंकि एक ये बहुत अच्छा अवसर होगा आपके लिए कि आप वहाँ एडमिशन लें और अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकें। सभी मित्रों को धन्यवाद, और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं हेत शाह और नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो सकेगी, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, साथ ही अभिवादन भी। नमस्कार।